आज हमारा बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। मैं चाहूंगी कि आपका मैक्सिमम टाइम उसी में चले। सीरत भी पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बाप होने के नाते से भी देखा, बेटा होने के नाते से भी देखा, और भी चीज़ें देखी, लेकिन आज हम करेंगे सीरत इब्राहिमी के तकाजे क्या, यानी सिर्फ लोगों की बातें करना, लोगों को अच्छा समझ लेना और वाहवा कर देना और कहना जी हमने एक और कोर्स कर लिया और हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में काफ़ी नई चीज़ें जान गए इस कोर्स में, ये मकसद नहीं है। हमारा मकसद क्या है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को जानकर हम अब ये जान सकें कि हमने क्या करना है और वो क्या चीज़ें थी, वो क्या खूबियां थी जिसकी वजह से अल्लाह ने इब्राहिम को चुना। बल्कि मैं कह सकती हूँ कि आज का जो सेशन अभी हम शुरू करने लगे, ये इस्लाम ए टू ज़ी है। मिल्लत इब्राहिमी असल में है क्या, ये सब कुछ आज अल्लाह की रहमत से हमारे सामने है। आइए शुरू करते हैं। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि श्रहली सदरी व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए हमेशा हमारा ध्यान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होता है और होना चाहिए। अगर एक एक्टिविटी के तौर पे और सिर्फ वो 10 रहमतें लेने के लिए पढ़ते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन शऊर तो होना चाहिए। लेकिन आज मुझे उम्मीद भी है और मेरा गुमान भी है कि मैंने जो भी दुरूद शरीफ पढ़ा तो इसको पढ़ते और सुनने के दौरान इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन फोकस थे, क्योंकि जिन शख्सियात के तस्करे हैं फिर उन पर अल्लाह की रहमतें क्यों ना हों और हम उसके बारे में क्यों ना जाने कि किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी के कुछ दिनों में अल्लाह के हुक्मों को मान गए। और अगर उनको लंबी उम्रें मिलती और तवील और हमेशगी की उम्रें मिलती तो वो फिर भी वही करते, क्योंकि उन्होंने अल्लाह को समझ लिया, पैगाम को समझ लिया। तो वह इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो थे जिन्होंने वफाओं का हक अदा कर दिया, जिन्होंने हकीकत में अल्लाह के चुने जाने की बात कर दी। तो आज हम देखेंगे आपके बारे में ये चीज़ कि जब हम उनके बारे में जानते हैं तो हमें दीन की कौन सी बातें समझ आती हैं। और मुझे लगता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस, ज़ाहिर है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में जो हमें बातें पता चली उससे भी हमें खुशी हुई, अच्छा ये भी नहीं पता था, अच्छा वो भी नहीं पता था, अच्छा ये भी था वो भी था। लेकिन जब ये सब जान लिया तो अब हमें क्या करना है, तो ये है मिल्लत इब्राहिमी और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में जानकर आपकी सीरत पे गौर व फिक्र करके उसके तकाज़ों को जानना। ये ऐसे ही कि जैसे सारा दिन खाना बनाए, किचन में जाते हैं और आप खाना बनाते हैं तो उस खाना बनाने के बाद सो जाते हैं। तकाज़ा क्या है आपके खाना बनाने का कि मेहमान आए, फिर वो खाएं, घर वाले खाएं, फिर आप खुश हों, फिर उसे एनर्जी मिले, फिर उस एनर्जी से आप अच्छे काम करें। हर चीज़ का एक मकसद होता है ना। तो हम बाज़ दफ़ा इल्म बरा इल्म लेकर अपने पलंदे भारी से भारी करते रहते हैं और दूसरों का जीना धोबर कभी कभी कर देते हैं। अपना इल्म वाला होना और अपने मुख्तलिफ कोर्सेज को करना और उसके अंदर अपने आप को बहुत शाबाशें देना, अपनी जगह बहुत बड़ी ऑनर है कि आपको मुझे इल्म का शौक़ है और अल्लाह ये मरते दम तक जारी रखे। लेकिन याद रखिए कि किताबों का बोझ है वो इल्म जिस इल्म में आपके पास अपने अमल की कोई दवा नहीं है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनके साथ ताल्लुक़ यहूद भी जोड़ते, नसारा भी जोड़ते, जिनके साथ ताल्लुक़ जोड़ जोड़ कर लोग अपने आप को बहुत कुछ समझने लग गए, लेकिन हमने उसमें से मिल्लत इब्राहिमी का क्या हिस्सा लेना है। पीछे हमने बात की थी कि यहूद और नसारा सबका ये दावा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी या नसरानी थे, और आज हम मुसलमानों का भी है। अल्लाह ताला ने हमें साफ कह दिया कि नहीं, तीनों के नाम एक तरफ कर देते हैं, लेकिन ये बात याद रखो कि जो उनके तरीकों पे चलेगा। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मुस्लिमीन मिन कब्लु व फी हाजा। अल्लाह कहते हैं ये तुम्हारे बाप इब्राहीम का दीन है, इसी अल्लाह ने तुम्हारा नाम इस कुरान से पहले भी और इस कुरान में भी मुसलमान रखा है। यानी यहूदी हो या नसरानी हो या आज मुसलमानों का कोई सेक्टेरियन यानी फिरका वाराना नाम हो, इन सब का इब्राहिम से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक उसका है कि फत्तबियु मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुश्रिकीन के हुक्म पे अमल करने वाला, और वो मुसलमान है जो रियल मुस्लिम है, डिक्शनरी वाला मुसलमान कह रही हूँ, लीगल अदालतों में या किसी मुसलमान मुल्क का मुसलमान नहीं हम कह रहे, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं। आज दुनिया में तकरीबन 2 बिलियन मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ मुसलमान वो है कि जिसने इन तकाजों को पूरा किया। फत्तबेऊ का हुक्म, ये सूरत आल इमरान की आयत 95 है। तो आपको मुझे अल्लाह से ये दुआ करके इस मौजू को सुनना है, ये 10 दिन आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो, क्योंकि कभी कभी एक बात समझ आ जाती है ना तो ज़िंदगी बदल जाती है। आज भी सुबह मैंने एक मैसेज पढ़ा तो मेरा रुआं रुआं शुक्र से भी और फिक्र से भी आ गया कि कभी कभी इंसान को महसूस भी नहीं होता कि उसने क्या बात किस तरह से की है और क्या उसका मामला है, लेकिन दूसरे के लिए वो इतनी अहम हो जाती है। क्योंकि मैं आप लोगों की बात करूंगी कि मुझे नहीं पता आप कितने फोकस से सुन रहे हैं और आप कितना इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन मुझे हर बात कहने से पहले 10 दफ़ा सोचना चाहिए, क्योंकि मैं तो कह के भूल जाऊंगी लेकिन दूसरों के लिए वो ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। एक स्टूडेंट की शेयरिंग थी और उन्होंने ये, मैं उसके चंद जुमले सुना दूं, सिर्फ एक तो उनका सदका जारिया बन जाए और दूसरा ये कि एक एक जुमला भी कीमती होता है, तो एक लम्हे के लिए बीच में मैसेज चेक करना और इधर से उधर जाना, अच्छा ज़रा मैं ये कर रहा हूँ, अच्छा ज़रा मैं ईमेल साथ चेक कर लूँ, आपका नेविगेटर ख़राब हो जाता है। इस वक्त आप सबको मैं वैसे ही फोकस सोचती हूँ जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद होती हूँ, सिर्फ वो चीज़ें सामने खुली होती है जो आपके पढ़ाने में मेरी मददगार हो। तो एक किसी स्टूडेंट का आज मैसेज था, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप पहाड़ की बुलंदी से ज़मीन पर गिरे हों? इमेजिन कीजिए। मैं इस जुमले को पढ़ के तो फिर मैं आगे पढ़ने लग गई कि ये क्या जुमला है, क्योंकि आप देखते हैं ना व्हाट्सएप पे जब मैसेज आते हैं तो पहला मैसेज नज़र आता है बगैर देखे, ये जुमला पढ़ के मैंने खोलिया, वरना इस वक्त सुबह में मैं नहीं खोलती। तो कहती हैं कि क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप पहाड़ की बुलंदी से ज़मीन पर गिरे हों? मुझे इस तकलीफ़देह कैफियत का एहसास कल हुआ। कल उस्ताजा, मेरा नाम लिखा हुआ उन्होंने आगे, उन्होंने अपनी क्लास में कहा कि, अब वो जुमला है आगे, हम अपने इल्म को अमल समझ लेते हैं, हम अपने इल्म को ईमान समझ लेते हैं। ये बस एक जुमला लिखा है इन्होंने मोटा करके, फिर आगे लिखती हैं, बज़ाहर ये एक छोटा सा जुमला है लेकिन इसमें समंदर की गहराई है, और इसको समझने के बाद इंसान को लगता है कि हमारे खुद के ऊपर डाले हुए पुख्ता ईमान के वो कच्चे पर्दे हट रहे हैं जिनके पीछे छुपकर हम खुद को बहुत आला समझ बैठते हैं। फिर इंसान खुद अपनी ही नज़रों में बेनकाब हो जाता है। ये जो इल्म की महफिल है ना, यह मैं बेनकाब करती हूँ, लोगों में तो हम बड़े अच्छे हैं, यहाँ बैठ के पता चलता है, बलिल इंसान वाला नफ्स ही बसीरा वलो अल्का माजीरा। यही कैफियत पहाड़ की बुलंदी से ज़मीन पर गिरने की है। यह लम्हा फिक्रिया है अमूमन सबके लिए और ख़ासूसन हम जैसों के लिए जो इल्म लेकर अब किसी भी दर्जे पर इल्म देने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमें इस फ़र्क को पहचानना होगा, इल्म होने और ईमान होने में फ़र्क करना होगा, क्योंकि इल्म होना निजात का सबब नहीं, असल कहानी तो ईमान और अमल की है। और इस सवाल का जवाब दिए बगैर तो क़यामत के दिन बंदे के कदम भी हिल ना सकेंगे। फिर आगे उन्होंने वही तिरमिजी की रिवायत लिखी है जो तफसीर में सुनी थी, 5 बातों का सवाल जवाब होगा और आखिरी चीज़ उसकी क्या होगी, माज़ा आमिला फी मा अल्लमा या माज़ा आमिला बीमा अल्लमा, कि जो इल्म हासिल किया था उस पर अमल कितना किया। आप देखिए कि एक एक जुमला कीमती होता है। आपका मेरा यहाँ बैठ जाना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, अल्लाह की नेमत है, लेकिन अगर इस वक्त आपको फिक्रें पड़ी हैं, सफाइयाँ कर लूँ, ये कर लूँ, साथ कपड़े तय कर लूँ, साथ मैं खाना बना लूँ, प्याज कर लूँ, लहसुन कर लूँ, तो करते रहिए फिर, वो तो पहले ही बहुत वक्त लगा दिया हमने, सारा दिन छोड़कर हम वो वक्त जिस वक्त फोकस होते हैं ना उस वक्त लेके बैठते हैं, चलो खाली क्या सुनना है, साथ कुछ कर लूँ। मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे सोए रहे और वो 1 घंटा जिसमें मेहमानों ने आना है उसमें सफाइयाँ करनी शुरू कर दें। तो ज़िंदगी में प्रायोरिटाइज़ कीजिए, ये आपका वक्त है। यही चीज़ें इब्राहिम में थी हनीफियत की सूरत में। तो आइए देखते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत मिल्लत इब्राहिमी हमारे लिए क्या थी, और इसको जानने के बाद फिर अब इसके तकाजे क्या हैं। कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है जिसकी वजह से अल्लाह किसी को इज्जत देता है। तो लफ्ज़ सीरत जो है ना, ये सारा यसीरू से निकलता है। पीछे अब इस पे बात की थी ना, सैर करना, उर्दू में भी लफ्ज़ है, ये जो लफ्ज़ तकाजा है ना, इसको लिखिए ज़रा। सीरत के तकाजों का मफहूम क्या है? सच्ची बात है, हमें ये तक नहीं पता इस वक्त। तो तकाजा आप समझ गए ना, यानी किसी चीज़ का तकाजा क्या है, तो इसको समझिए काफ दात या। इसका मानी क्या होता है? हाजत, ज़रूरत, मुतालबा और चाहत। और इस्तलाह में तकाजा कहते हैं एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत महसूस करना, इसकी हाजत वाज़े करना और हासिल करने और पूरा करने का मुतालबा करना, और हर लिहाज से इसके लजूम यानी इसके लाजिम होने को सराहना और चाहना। मैं आसान सा बता देती हूँ, सीरत पढ़ने का तकाजा ये है कि अब आप उन सारी चीज़ों की ज़रूरत महसूस करें, आपके अंदर वो चाहत पैदा हो जाए जो उनमें थी, और आप इन सब को अपने ज़ात के अंदर लेकर जाएं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के तकाजों से मुराद आपकी सीरत को अपनाने की ज़रूरत और मिल्लत हनीफियत। हनफी ना कहिएगा, कई लोग इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं। हनीफ समझ गए ना, फोकस्ड। मिल्लत हनीफिया को अमली जामा पहनाने की हाजत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जानने के बाद अब लाजमी है कि हम मिल्लत इब्राहिमी को जाने, कि जब बंदा हनीफ हो जाता है, जब फोकस्ड हो जाता है, तो फिर उसकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आती हैं। चंद आयतें, जैसे कि इस पूरी सीरीज़ में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हमने अभी तक 80% आयतें हज़रत इब्राहिम से मुतल्लिक कर ली हैं। शुरू में पहले दिन बताया था आपको 69 टाइम इनका जिक्र है और तकरीबन 25 सूरतों में इनका जिक्र है। तो वो सारी चीज़ें आपको पाइल अप करा दी गई। अब अगले 3 दिन में देखिएगा और भी क्या कुछ मिलेगा। तो आप बड़े शौक से, बड़े यकीन से, और मैं भी कह सकती हूँ अपनी कोशिश के मुताबिक, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में हमने सैर हासिल बात कर ली है। कुरान की सारी आयतें और हदीस का जो भी बीच में हिस्सा हम कोट कर सके वक्त के एतबार से। तो चंद असूल, चंद बुनियादी बातें जिसको आप अकायद और ईमान भी कह सकते हैं और अहकामात और मसाइल अखज करना भी कह सकते हैं, और इसको करेक्टर बिल्डिंग यानी तामीर इंसानियत भी कह सकते हैं। हम सब का ये हक बनता है, जिन्होंने माशाल्लाह और ख़ासतौर पे आप लोग जिन्होंने इसके लिए वक्त लगाया, और वो क्या है कि अब हम कुछ ऐसी बातों पे अलग से बात करें ताकि वो मेरी आपकी ज़िंदगी में अपना असर दिखाएं और कल हमारे मीज़ान अमल में उसका वज़न किया जा सके। फ़त्तबिउ मिल्लत इब्राहनीफा के हुक्म पर अमल के लिए सारी बातें आगे आपको देने लगी हूँ। तो मिल्लत इब्राहिमी का बुनियादी नुक्ता, फोकल पॉइंट, ला इलाहा इल्लल्लाह था, तौहीद, वहदहु, अल्लाह को एक मानना। वाहे तौहीद, ये लफ्ज़ हम कुरान में बहुत जगह पढ़ते हैं। तो लिखिए कि मिल्लत इब्राहिमी का पहला उनसर क्या है कि ज़ात हो कि सिफात हो, अल्लाह एक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कुरान ये बताता है कि अल्लाह है। कई लोग कहते हैं कुरान पढ़ें तो पता चल जाता है कि अल्लाह ताला है। नहीं, लिखिए गलत कहते हैं हम। ये तो पैदा होते बच्चे को पता है कि अल्लाह है, क्योंकि अलस्तु भी रब्बी को ये दावा तो हुआ था ना। अल्लाह ने इंसानों की रूहों से ये मुतालबा लिया था कि बताओ दुनिया में जाओगे तो किसको एक रब मानोगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इसमें कि ये जो 10 दिन है ना, इसकी अफादियत शायद ही कभी आपने सुनी हो या सुनी है, पता तो है, तफसीरों में तो बहुत दफ़ा कहा, लेकिन अलग से ना जाना हो, ये 10 दिन जिससे हम गुजर रहे हैं ना, इन दिनों में से एक दिन में अल्लाह ने इंसानों से अपनी रबूबियत का वादा लिया था। मैदान अरफा था, हदीस है, अल्लाह ने सबको जमा किया और अरफात के मैदान में ले गए। तो ये इन 10 दिनों के फजाइल में से एक फजीलत है जिसको अलग से नोट कर लें बेशक, या जब भी कहीं आपका दिल चाहे। लेकिन बात यह है कि अल्लाह ने इंसान के रूह के अंदर ये चीज़ डाल दी थी कि अल्लाह है। कुरान हमें ये बताता है कि अल्लाह एक है, वरना अल्लाह है का दावा तो हर एक करता है, कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई जीसस कहता है, कोई उज़ैर कहता है। तो कुरान ने इस्लाम की जो बुनियाद हमें दी वो तौहीद की है। इसको मानते हुए इंसान अपने कौल को, अपने फेल को, अपने माल को अल्लाह के लिए लगा दे। कौली फेली माली बातें सिर्फ अल्लाह के लिए करना, ये मिल्लत इब्राहिमी का पहला उनसर था। और आपने मसला पढ़ लिया, सारी ज़िंदगी इब्राहिम इसके प्रैक्टिकल देते रहे और टिक 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 कर कर फर्स्ट रहते रहे, हर जगह उनको अल्लाह ने कामयाब कर दिया। ये है तख्लीक के कायनात का मकसद जिसके लिए अल्लाह ने इस कायनात को पैदा किया। और इस वादे का जिक्र किधर है, नोट करिए, सूरत अल अराफ आयत नंबर 172 से 173। वही जख़ज रब्बुक बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम। और इस बात को याद करो जब आपके रब ने बनी आदम की पुश्तों से इनकी औलाद को निकाला और इन्हें खुद अपने ऊपर गवाह बनाकर पूछा, यानी वी गेव विटनेस अगेंस्ट अस, हम सब अपने खिलाफ गवाही दे के क्या कहते हैं। अल्लाह ने क्या पूछा था, अलस्तु भी रब्बिकुम, कालू बला शहीद नान तकूलु यौमल कियामती ना कुन्ना अनहाजा गाफिलीन। क्या कहा था कि क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं, तो वो कहने लगे क्यों नहीं, हम खुद गवाह हैं, ऐसा न हो कि तुम क्यामत के रोज कहो कि हम तो इससे बेखबर थे, या यूं कहो कि पहले शिर्क तो हमारे बाप दादा ने किया और हम इनके बाद इनकी नस्ल में से हुए, तो क्या तू हमें इन बातिल लोगों के फेल के बदले हलाक करता। यानी कोई कह दे कि मुझे हिंदू घर में पैदा करके अब अल्लाह एक खुदा को मानने का दावा करता है, ये तो ज्यादती है, और अल्लाह ने मुझे किसी ट्रिनिटी के फॉलोअर के घर में पैदा कर दिया है तो मैं कैसे तौहीद पे आऊं। तो ये वादा अल्लाह ले चुका आपसे मुझसे। तो पहली बात क्या समझ आई, तौहीद वो मकसद जिसके लिए दुनिया पैदा की गई और अल्लाह ने उसका वादा इंसानियत से ले लिया उनकी रूहों की शक्ल में, और वो मैदान अरफा था और इन्हीं दिलहज के दिनों में से कोई दिन था। और अल्लाह की शान है, वो जो जब चाहे कर दे, उसके लिए कोई बात मुश्किल नहीं है, वो मालिक है, जिस अमल में बरकत डाल दे उसको बड़ा कर दे। आम दिनों के अमल अल्लाह ताला रमज़ान में नफिल को फ़र्ज़ में बदल देता है, आम दिनों की नेकियों को अल्लाह ताला ज़िलहज के 10 दिनों में सारी नेकियों से अफजल कर देता है। तो ये इन दिनों की खूबियाँ जिससे आप और मैं गुजर रहे हैं, और अल्लाह तो वो है कि जो चाहे तो जिस जगह को मुअत्तब कर दे, हरम में ले जाए, आपकी एक नमाज को 1 लाख नमाजों में बदल दे, जिस मौके को अजीम कर दे, उसकी मर्जी है, वो मालिक है। और अल्लाह जिसकी नाम की कसम सब खाते हैं, अल्लाह की कसम खा सकते हैं ना, सारी कायनात अल्लाह के नाम की कसम खाती है, और वो अल्लाह कसम खाता है, वल फज्र वल लयाल नश्र, वो रब कसम इन दिनों की खाता है जिससे आप और मैं गुजर रहे हैं। तो शऊर के साथ इन दिनों को गुजारिए, इसको जाया ना कीजिए, एक एक चीज को बेहतरीन तरीके से रखिए। दूसरी बात नोट कीजिएगा कि यही वो मकसद है जिसके लिए कमोबेश 1,24,000 पैगंबर और रसूल मबूस किए गए। ये दूसरी वजह, और कई किताबें जिसमें 300-400 किताबों के भी हवाले मिलते हैं अल्लाह ने नाजिल की, इसकी दलील लिखिए सूरत अल अंबिया आयत 25, वमा अरसलना मिन कबलिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैह अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना। ये जुमला देखिए, ला इलाहा, हम क्या कहते हैं, इल्लल्लाह, अल्लाह खुद कह रहा है ला इलाहा इल्ला अना। अगर आपको समझाने के लिए कह दूं कि अल्लाह अपना कलमा खुद पढ़ रहा है, अल्लाह ओनली इलाह होने की गवाही खुद दे रहा है, तो सूरत अल अंबिया की आयत नंबर 25 नोट करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और आपसे पहले जो रसूल भी हमने भेजा उसकी तरफ भी यही वही फरमाई कि मेरे अलावा कोई भी माबूद बरहक नहीं, बस तुम मेरी ही इबादत करो। तो क्या पता चला, सारे अंबिया कराम इस तौहीद की दावत के लिए भेजे गए, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जात का सबसे बुनियादी वसफ तौहीद थी। और राज की बात, पते की बात, छुपी हुई बात जो छुपेगी नहीं, आज भी जिसकी तौहीद पुख्ता है ना, उसके पास उतना सुकून, उतनी खुशी, उतना तवक्कुल, उतनी जीदारी, उतनी जिंदा दिली, उतना फ्रेश, उतना खुश, उतना प्रोडक्टिव, और उतना नाकाबिले तस्खीर है, और उतनी उसकी दुआ कबूल होती है। उसके मुंह की तो निकली बात को ऐसे पूरी कर देता है जैसे माँ अपने बच्चे का लाड देखती है, चलो मेरा बच्चा कह रहा है तो मैं माँ नहीं जाती, मुझे पता है चीज़ तो अच्छी नहीं मांग रहा, लेकिन कोई नहीं, मेरा बच्चा तो खुश होगा। आप चाहते हैं अल्लाह के यहाँ आपकी इज्जत हो, आपकी शान हो, तो तौहीद पे मेहनत कीजिए। देखिए एक मिसाल लिखिए, आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। ईमान ही वो असल में एनर्जी है जिससे सारे अमल साले होते हैं। ईमान का पता कैसे चलता है? आपके आमाल से। मसलन बिजली है कि नहीं, कहाँ से पता चलता है? कोई आता है कमरे में, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, यहाँ तो नहीं इतनी बड़ी ये मौसर मिसाल होगी, बिजली है तो किधर देखते हैं? वो वायर को हाथ लगाकर देखते हैं जिसमें बिजली की रो भुग रही है, ताकि अगर है बिजली तो चिपक जाए, और ना चिपके तो कह देंगे कि नहीं है। किधर नजर जाती है? पंखे की तरफ नजर जाती है। बल्ब देखते हैं आप, मोटर चल रही है कि नहीं चल रही। मिसाल इतनी समझ आ गई है? लिखिए, बिजली है कि नहीं, इसका पता चलता है बल्ब से, या बल्ब के चलने और पंखे के और एसी के चलने से। इसी तरह ईमान का पता चलता है अमल साले से। भाग भाग के नेकियां हो रही हैं कि नहीं हो रही? बल्ब जल रहे हैं, नेकियों की कोशिशें हो रही हैं कि नहीं? युजाहिदून फी सबीलिल्लाह हो रहा है कि नहीं? नमाजों के लिए, फजर के लिए घरों से निकला जा रहा है कि नहीं? ये सब आपके मेरे ईमान का बहुत प्यारा एक राज होता है जो खुलता है। तो क्या पता चला? तौहीद। और याद रखिए कि तौहीद की जो जिद है ना, वो शिर्क है। ऑपोजिट से चीज़ें समझती हैं ना। गर्मी है तो सर्दी, सर्दियाँ ना आती तो हमें गर्मी का पता ही ना चलता, बहार ना आती तो हमें खिजां का पता ना चलता। तो शिर्क को समझना लाजमी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह का ये कहना कि व मा काना मिनल मुशरिकीन, आपको मुझे भी इस चीज़ का पैगाम देता है, और तकाजा है ये सीरत इब्राहिमी का कि शिर्क के बारे में जाने। और शिर्क बहुत बड़ा जुल्म और नाकाबले मुआफ़ी जुर्म है। बग़ैर तौबा के अगर दुनिया से चले जाए तो बख्शिश भी नहीं है। हवाला लिख लीजिए, सूरत लुकमान 13, इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। और दूसरा लिखिए निसा 116, इन अल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाही फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। अल्लाह नहीं माफ़ करेगा शिर्क को, इसके अलावा जिसका जो गुना चाहे माफ़ करे, ना करे तो ना करे। तीसरा रेफरेंस लिखिए, इन नमल मुशरिकूनन नजस, सूरत तौबा आयत 28 है, बिला शुबा मुशरिक नापाक हैं। अगला लिखिए, शिर्क की मौजूदगी में तमाम नेक अमल ज़ाया हो जाते हैं। चार इतने बड़े बड़े लॉस की बातें आपने सुन ली, बीपी लो हो जाना चाहिए, फिक्र लग जानी चाहिए कि कहीं अंदर कोई शिर्क तो नहीं घुसा पड़ा। कोरोना वायरस जो आंखों से दिखाना, उसने इंसानियत को परेशान कर दिया, परेशान दुखी लोग ऐसे घबराए फिर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अगर कोरोना की जगह शिर्क का जरासीम जिस्म में आ गया, वो तो आपकी इम्यूनिटी ख़राब कर देता ना। शिर्क तो आपके सारे अमल ज़ाया करता है। कहाँ लिखा है नोट कीजिए, सूरत ज़ुमर 65। इस वक्त आप सिर्फ रेफरेंस ही लिख सकेंगे, आयतों में ना उलझिए, घबराहट में फिर दूसरों से पूछेंगे, इधर से उधर आगे से पीछे होंगे, बाद में कुरान से देखकर लिख लीजिएगा। वलक़द उहिया इलैका व इलल्लज़ीन मिन क़ब्लिका लाइन अशरकता लयहबतन अमलुक वलतकूनन मिनल खासिरीन। यकीनन आपकी तरफ और आपसे पहले तमाम नबियों की तरफ भी यही वही की गई कि अगर आपने शिर्क किया तो ज़रूर अल्लाह ताला आपके अमाल भी ज़ाया कर देगा, और यकीनन आप खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो बड़ा बड़ा एक जुमला लिख लीजिए, शिर्क या अकीदे पर मरने वाला हमेशा के लिए दोजख का ईंधन बन जाता है। ये पांचवा पॉइंट है, नोट कर लें इसकी दलील। मायदा 72, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाही फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना वमावाहु नार वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। यकीन मानो कि जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है, अल्लाह ताला ने इस पर जन्नत हराम कर दी है, और इसका ठिकाना जहन्नुम है, और रोज़े क़यामत ज़ालिमों के लिए कोई भी मददगार ना होगा। चंद जुमले लिखिए, गोल्डन वर्ड्स हैं ये, आपके जेम्स हैं जो बाद में दूसरों को भी आप फ़ायदा देंगे। शिर्क आम है, कॉमन, और तौहीद नायाब है। फिर बोल देती हूँ, शिर्क आम है और तौहीद नायाब है। आज अक्सर लोग तौहीद और शिर्क के मानी और मफहूम से ही नावाकिफ हैं। शैतान जो इंसान का अबदी दुश्मन है, वो शिर्क जैसे कबीरा गुनाहों को मुज़य्यन करता है, सजाता है, डेकोरेट करता है। जैसे आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, फिर ज्वेलरी पहनते हैं, मेकअप करते हैं ना, सजते संवरते हैं, शैतान गुनाहों को डेकोरेट करता है। इसको भी लिख लें अलग से जुमला। कहीं शैतान ने आपके घर में जितने डेकोरेशन पीस हैं उससे ज्यादा डेकोरेशन पीस आपके गुनाहों के तौर पर तो नहीं सजाए हुए? ये वो वजह है। लिखिए, मेरा दिल करे मैं रुकूं, मैं आपको पता कैसे बोल के लिखाऊं। लिखिए, शिर्क वो कबीरा गुना है, ऐसे बोलूं फिर आप सो जाएंगे या पूरा लिख लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, बस बात को जज्ब कीजिए। क्योंकि मैं ऐसे गुजर जाऊंगी ना, आपको हाँ मैं पता, शिर के आगे चले आगे चले। वो जैसे एक वाक्य आपको शायद कई बार सुना दिया ना, कि एक मौलवी साहब थे, तो वो हमेशा उनपे गिला था लोगों को मस्जिद वालों, क्योंकि जब भी बात करते हैं तो ये तौहीद की बातें बड़ी करते हैं। तो लोगों ने कहा कि ये मौलवी साहब क्या हर वक्त अल्लाह एक की बातें करते हैं। तो खैर, बात थोड़ी सी आगे बढ़ी। अगले दिन ये जब इमाम साहब बाहर से आए तो कहने लगे कि आज तो गजब हो गया, क्योंकि अगर आज मैं सिर्फ आपको तौहीद शिर्क के फर्क बता के चली गई तो मैं अपने आप से खुश हूं। मुझे आपको सब कुछ नहीं देना, मुझे वो आपको वो रूट कॉज देनी है, जिसके बाद आपके छोटे छोटे आमाल भी कबूल हो जाएं और आपकी बड़ी बड़ी नेकियां जाया होने से बचें। क्योंकि आज शैतान ने पता किस में लगाया हुआ हमें, नफली बातों में, और छोटी छोटी बातों को हाईलाइट करके कौम को तफरकों में डालने पर। और कुछ शिर्क करे, बिदत करे, कहते हैं इट्स ओके। तो खैर, वो इमाम साहब जो थे उनका हाल क्या था कि वो हर वक्त तौहीद की बातें करते थे, लोगों को बड़ा उन पे गुला था कि कोई और बात भी तो सुनाए। उन्होंने उसका एक तरीका सोचा, मस्जिद में आए, कहा गजब हो गया, गजब हो गया आज तो बाहर। लोग घबरा, क्या हुआ क्या हुआ, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं गोली चल गई है। कहा वो देखो, मैं वहां से गुजरा तो एक कब्र थी और अस्तगफिरुल्लाह, लोग उधर सजदे कर रहे थे। तो वो लोगों की ना जैसे गुब्बारे में से हवा निकल गई। अच्छा, हाँ 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 ठीक है, थोड़ी देर बाद लोग डिसमिस हो गए। यानी इट वॉज वेरी सिंपल फॉर देम, कॉमन था, कोई रिएक्शन शो नहीं किया। अगला दिन हुआ, इमाम साहब दोबारा आए, कहने लगे अस्तगफिरुल्लाह आज तो बहुत ही गजब हो गया। अब फिर लोगों ने सोचा आज कोई नई खबर, ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं, कोई वैक्सीन या कोरोना की बातें होंगी। जी क्या हुआ? कहा वो देखो, एक दरख्त के नीचे लोग बैठे दरख्त को सजदा कर रहे हैं। फिर लोगों ने कहा सो के, ये मौलवी साहब का तो चॉइस ही अजीब सी है, हमें तो समझ ही नहीं आती। कोई मसला ना हुआ। तीसरे दिन भी उन्होंने कोई ऐसी ही बात की, लोगों ने कोई नोटिस नहीं लिया। चौथे दिन जब मस्जिद में इमाम साहब आते हैं तो कहते हैं आज तो गजब हो गया। कहा क्या हुआ, ऐसे बेदिली में क्या हो गया? कहा ऐसी कोई बात ही करेंगे। कहा वहां एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा था, बस इतनी बात सुनने की देर थी आवाजें बुलंद हो गई, कौन है, किधर है, इधर हटो, मैं पूछता हूँ किधर है, मैं जाता हूँ। यानी सारे उस लड़की की मदद करने चल पड़े कि जरा देखें लड़की कौन सी जिसको छेड़ा, हम भी देखें जरा, शौक तो आएगा ना। उन्होंने कहा बस रुक जाओ, बैठ जाओ, 3 दिन से मैं तुम्हें शिरकिया अमूर के बारे में बताता रहा और तुम्हारे कान पर जू नहीं रिंगी, और आज मैंने एक जिना या चलो एक वल्गैरिटी की बात की है तो तुम गुस्से में आ गए। इसका कहता ये तुम्हें मजमून बड़ा अच्छी तरह आता है, लेकिन तुम्हें अभी तौहीद सीखनी है तो बैठो, मैं तुम्हें फिर तौहीद ही सिखाऊंगा। आज हमारा ये हाल है, निकाह नहीं हुआ वा और बच्चे पैदा हो रहे हैं। आज हमारा हाल है कि हमारे बैग के अंदर सुराख है और हम ऊपर से नेकियां भर रहे हैं, नेकियां भर रहे हैं, एक तरह की नेकियां, दूसरी तरह की नेकियां। अब वो वक्त नहीं है इतना, वरना मैं आपको दसियों चीजें इसमें अभी लिखा दूं। तो शिर्क को समझिए, वो आपके बैक होम का शिर्क है, चाहे कब्र परस्ती का है तो उसको समझिए, वो काली बिल्ली रास्ता काट गई तो उसको समझिए। और शिर्क के तो इतने रंग हैं, जैसे आप कहते हैं ना गिरगिट के रंग होते हैं, रंग बदलता है, हर दौर का शिर्क मुख्तलिफ है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौम का बुत परस्ती का शिर्क था ना, उन्होंने बुत तोड़े थे। आप कहते हैं आज का शिर्क है मदह परस्ती। तालीम, रियली अगर 20s में कोई प्रॉफिट आता, ये पिछले 10-12 साल में तो खास तौर पे, तो वो कोई इंटरनेट से मुतल्लिक, कोई सोशल मीडिया से मुतल्लिक को मुजाहरे करता, वो मदह परस्ती का शिर्क का तोड़ करता। और सबसे बढ़कर माजरत के साथ बहुत ही बड़ी बात कहने लगी हूँ, जो इधर उधर बैठे बातें कर रहे हैं वो भी सुन लें, जो भी घरों में जिधर जिधर भी जो बैठे, मैं एज्यूम ही कर सकती हूँ, कान लगाकर एक बात सुन लीजिएगा। और वो क्या है कि आज हम सब अगर इस चीज को समझ जाएं तो हमारी जिंदगी में एक बिग चेंज आ जाएगा, एक यू टर्न आ जाएगा। और वो क्या है कि हम हर फैसले के अंदर, चाहे अपने बारे में करें, बच्चों के बारे में करें, वो फैसला तालीम का हो, एजुकेशन, प्रोफेशन चूज करना, वो फैसला घर कहाँ लेना, वो फैसला कारोबार क्या करना है क्या नहीं करना, हर फैसला उसके अंदर एक कॉमन थिंग जरूर है। समझिए जरा कि इस फैसले का मेरी माली हैसियत पे क्या फर्क पड़ेगा। माल, मनी, रिश्ता करना है किधर करते हैं? इमाम साहब का रिश्ता आता है किसी औरत के लिए करते हैं? इमाम मस्जिद के बेटे का रिश्ता आता है कोई करता है? कोई ऐसा शख्स के जिसके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, वीजा नहीं है, करता है? हमारा हर फैसला, चाहे वो तिजारत का, रिश्ता, घर लेने का, कोई ना कोई एक खौफ या एक अंदर मेन आइटम के कि मैं ये काम करूंगी तो मेरे मनी से क्या। इवन आप बाजार से कुछ खरीदने लगते हैं तो आप देखते हैं कि ये चीज जो दूंगी इसके पैसे कितने देने हैं, ये सस्ती है कि महंगी है। चलिए, लेन देन में तो माल चलता ही चलता है, ये तो हम सभी जानते हैं। बच्चों के स्कूल, बच्चों के प्रोफेशन, बच्चों के रिश्ते, पाकिस्तान जाऊं के ना जाऊं, फिर ये पे जाएं के ना जाएं, ये दावत करूं ना करूं, हर चीज के आखिरी सिरे पे माल पड़ा हुआ है। कितनों को बात समझ आ गई है जी? इसको खत्म कीजिए। शिर्क है ये भी, एक बहुत बड़ा बुत है आज। माल बुत है, एजुकेशन बुत है। आज के दौर का कोई नबी होता ना तो हमारे एजुकेशनल सिस्टम को सामने रखकर, जो हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में हौके लगे हुए हैं ना, परेशानी है, पता नहीं हो क्या जाएगा, बेटी किसी गरीब घर में चली गई, हाय हाय ये बेचारी खाएगी कहाँ से। कोई कह दे कोई बात नहीं, अल्लाह कहते वन के लिए आमा, इनको कर दो, अगर कोई गुर्बत होगी तो अल्लाह अपनी ताकत से गनी कर देगा। आप कहते हैं नहीं जी, फिर भी आंखों देखा जहर कौन खाए। तो आज हम सबको अपने छुपे हुए शिर्क को जानने की जरूरत है। और एक आयत जिसने मेरी अपनी जिंदगी में एक गहरा असर डाला था, इससे मुद्दत हो गई है, क्योंकि हम शुरू से जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, उनका एक दावा है कि हम अहले तौहीद हैं। अपने आप को तौहीद वाले कहते हैं और बाकी सारों को, अक्सरियत को, ऑपोजिट समझते भी हैं। तकरीरों का भी यही रुख है, जलसों जुलूसों के नारे भी यही हैं। लेकिन जिस वक्त मेरे सामने सूरत यूसुफ की आयत, वमा यूमिनु अक्सरुहुम बिल्लाही इल्ला वहुम मुशरिकुन, अब आप इसको सुनिए, शायद जो लम्हा मेरे जिंदगी में कई साल पहले आया था आज आपका भी आ जाए। जिसके बाद मैं सोच में पड़ गई थी कि कहीं मैं भी मुशरिक तो नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं अक्सर लोग ईमान का दावा करने के बावजूद भी मुशरिक ही रहते हैं। दूसरे जुमलों में इसको कह दें कि बहुत सारे ये खुद को मुसलमान और ईमान वाला कहने वाले भी मुशरिक ही होते हैं। उस दिन मेरे लाशऊर में एक पत्थर गिरा था, और वो क्या था कि कहीं मैं भी मुशरिक तो नहीं हूं, और मुझे पता ही ना हो, क्योंकि अल्लाह खुद कह रहे हैं उनको पता ही नहीं चलता। सोचिएगा आपका मेरा अपनी जिंदगी के बारे में क्या फैसला है। तो याद रखिएगा, शिर्क बारीक है, काली रात में स्याह पहाड़ पे चींटी चलती है ना, नजर नहीं आती, शिर्क भी नहीं दिखता। बड़े से बड़ा मुशरिक खुद को मुवाहिद समझता है जी, उसको यकीन होता है मैं तौहीद पे, वरना कभी करे देखे ना, जानते बूझते बिजली के तार को कौन हाथ में पकड़े, पता हो इसमें बिजली की रोक गुजरनी है तो कोई पकड़ेगा कि मैं देखूं बिजली है कि नहीं। तो ये शिर्क आपकी मेरी जिंदगी के अंदर एक आग लगाने का जरिया बनता है। तो शऊर से जिए, और इल्म की ये शान है कि ये बंदे को फर्क बताता है। कोई ना माने मेरी बला से, मैं ये जितना भी आज बोल रही हूँ, आप में से कोई बात में अमल करे ना करे, मुझे कोई केयर नहीं, आई डोंट केयर। हाँ, मैं ये कहूंगी कि मैं यहां बैठकर आपको बात सही कहूं, मुझे किसी की नाराजगी का कोई खौफ ना हो, और मुझे किसी को खुश करने के लिए कोई झूठ सच नहीं कहना। बात वो करनी है जो अल्लाह ने कह दी, और कुरान आपको दे रहे हैं इससे बढ़ के बीच में चंद जुमले मेरे हैं, बाकी इस पूरी सीरीज में कुरान है और उसकी आयतें और उसका तर्जमा। तो लिखिए, सीरत इब्राहिमी का तकाजा है कि बंदों की अक्सरियत को शिर्क की दलदल से बचाने के लिए तौहीद का प्रचार किया जाए। जितना ज्यादा तौहीद पे आते जाएंगे, दूसरों का शिर्क आपको ऐसे चुभेगा जैसे नहाने के बाद अपने ही पहले से उतारे हुए कपड़े मैले लगते हैं। आपने नोट किया ना, आप काम करते रहें और आपको पसीना आए, आपको पता भी नहीं चलता कितने गंदे हैं। को बाहर से आएगा तो हो सकता है उसको आपकी स्वेटिंग चुभे, लेकिन जब आप एक दफा शावर ले लेते हैं तो दोबारा वो पहले पहने हुए कपड़े को क्या पहनो, तो स्मेल आती है ना, ये है इल्म का पानी। अगर आपको वो बू आने लग गई है, अल्हम्दुलिल्लाह करें, शुक्र करें, अपने खानदानों में, अपनी बिरादरियों में, अपने इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उन सब को सामने रखिए, शिर की बू आती है, फिर आपको रस्मों से भी शिर की बू आएगी, तो शादी हॉल में आप इंजॉय करेंगे? इधर अल्लाह ना करे कोई पैम्पर पड़ा हो तो आप बैठेंगे नमाज में या क्लास में? दिल करेगा? कितना सोने चांदी जैसा घुपला बच्चा, और जरा उसे एक सेकंड की स्मेल आए, दिल नहीं करता उसको पास से लाए, समझ गए ना? तो शिर्क की दलदल से बचाना, तौहीद का प्रचार करना, शिर्क के खतरात से आगाह करना। क्यों लिखिए जुमला? ये जुमला मैंने नहीं बोला, ये तारीख में एक शख्सियत का जुमला है। मिस्र फतह करने गए थे, अगर मैं भूलू ना, तो अमर बिन अल आस का ये जुमला है। अमर बिन अल आस जब वो मिस्र के फाते बंद कर गए, या उन्होंने लोगों से कहा किधर जा रहे, तो उन्होंने कहा बंदों को बंदों की गुलामी से निकालकर एक रब का बंदा बनाने के लिए आए हैं। ये है खनीफियत। ऐसे ही इब्राहिम का नाम नहीं, वो जिसको कहते हैं ना कि मोतियों की तरह माला जपना, अल्लाह ताला अपने प्यारे नबियों की जो तारीफें करते हैं ना कुरान में, उसकी वजह ये है कि वो अल्लाह के साथ बर्दाश्त नहीं करते, जैसे हम दूसरी बीवी को ना बर्दाश्त करें। मियाँ शादी करे दूसरी, एक बीवी कहती मैंने तो वसीयत कर दी कि मेरे बाद भी आपने दूसरी शादी नहीं कर दी। मैंने कहा अगर उसने कर ली तो आप कब्र से निकल आएंगी, तो आपको क्या मिलेगा? कहती नहीं, मेरे बाद भी मुझे ही याद करें। एक बीवी अपने मियाँ को कहती है मैं मर जाऊंगी तो आप क्या करेंगे? कहने का तुम्हारा बुत बना के पूजूंगा और क्या करूं, तुम क्या चाहती हो मुझे बता दो। यानी आप जिस मियाँ से मोहब्बत करते हैं, आप अपने मरने के बाद भी उसकी रोटी पानी की कोई फिक्र ना करें, सिर्फ ये कहते हैं कि आपका तकाबुल कोई ना, तो आप ये शिर्क है। दूसरी बीवी, चाहे एक बच्चे के आने के बाद जो नया बच्चा आता है ना, तो माँ की गोद से उस बच्चे को निकालता है और उसको वो नाखून मारता है, खरूंडे मारता है ना, वो शिर्क नहीं बर्दाश्त कर रहा कि कल तक तो मैं था आंखों का तारा, ये किधर आ गया? और हजरत यूसुफ के भाई क्या कहते थे, यखलु वजहु अभी, हमारे बाप की तवज्जो खाली हो जाए, ये क्या बीच में आ गया, हटाओ। माँ का दुपट्टा नहीं बच्चे किसी को लेने देते, माए कितने प्यार से सुनाती हैं। एक माँ कहने लगी है, ये चंद दिन पहले कुछ सुना रहा था पता नहीं क्या, कि घर में कोई मेहमान आ गया अल्लाह का बंदा, और वो उसने रखी जूतियां घर में होती हैं पहन लो, वो गरीब मेहमान आई उसने जूती रखी भी पहन ली, जो उस बच्ची ने पीछे जाकर उसकी जूती उतरवाना ली, चैन ना बड़ा, ये मेरी मामा की जूती आपने क्यों पहनी? तो माँ के अंदर शरीक नहीं चाहती बच्ची। आप में अपने रब का शरीक करें, सिर्फ मेरी आंखों के सामने ये जो बाहर है उनको नहीं पता, लेकिन ये एक छोटी सी खिड़की है ना, आप जो इधर हैं उनको तो पता है ना, यानी फुल साइज नहीं हाफ साइज खिड़की है, और उसमें से मुझे पीछे दूर आसमान दिख रहा है और दरख्तों की ऊपर की टहनियाँ और पत्ते दिख रहे हैं। अल्लाह की कसम खा के मैं कह सकती हूँ कि अल्लाह और कुछ भी ना बनाता, ए टू जी ग्लोब, और ये दुनिया जिसको आप दुनिया कहते हैं ना, आपको तो इस यूनिवर्स में ये मक्खी के सर पे या उसकी मक्खी की नोक पे लगा हुआ एक कतरों से भी छोटी है जिसके लिए हम मर रहे हैं। पूरी दुनिया इस यूनिवर्स में एक डॉट क्या, एक मक्खी का दुबका है। तो मैं कहती हूँ ये सिर्फ छोटी सी खिड़की में जो बना दिख रहा है ना, मुझे सिर्फ नेचुरल की बात करूं, अल्लाह सिर्फ यही बनाता ना, तो मैं फिर भी उससे अमेज्ड थी, क्योंकि अमेज्ड बाय अल्लाह सुब्हान तआला।